بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفاه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تم الله کا انکار یا اللہ کی ناشکری کیسے کرتے ہو جبکہ اس نے تم میں زندگی اور روح پھونکی جب تم مردہ تھے. وکنتم امواتن فاحیاکم، تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا. ثم یحییکم، پھر دوبارہ وہ تمہیں زندگی دے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کے پاس تم سب کو لوٹا کر لے جایا جائے گا. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، اسی نے تمہارے واسطے زمین کی ساری چیزوں کو بنایا ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر آسمانوں کی جانب قسط راست فرمایا، پھر ان کو ٹھیک ٹھیک سات آسمان بنا ڈالے. وہو بکل شیء علیم، اس کو ہر چیز کا پورا علم ہے. جہاں توحید کا مضمون آیا تھا پچھلی آیتوں میں، وہاں اللہ پاک نے مضمون توحید کو دلائل سے ثابت کرنے کے لیے دلیل کی جگہوں پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا. ان آیتوں کے اندر بھی اللہ پاک بعض نعمتوں کو ذکر فرما کے، بلکہ اجمالی طور پر ساری نعمتوں کو ذکر فرما کے انکار اور کفر کرنے والوں کے انکار اور کفر پر تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں. یہ حیرت ہے کہ جس خدا کی تم پر ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن میں سے ہر ایک نعمت تم کو اس کی طرف لے جانے والی ہونی چاہیے اور ہونی والی ہے، ایسی ہے کہ وہ تم کو تمہارے خدا تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ بجائے خدا کی طرف تم کو پہنچانے کے وہ خدا سے تم کو بیزار بنا رہی ہے. اس میں جو مختلف نعمتیں ہیں، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، سب کے سب بے جان تھے، پھر اللہ نے زندگی کی روح پھونک دی. ہم جتنی جاندار مخلوقات ہیں، سارے جاندار مخلوقات کی ابتدا سے پہلے، ان کے وجود اور پیدائش سے پہلے ان کو دیکھیں گے تو ان کا وجود بکھرا ہوا ملے گا، کچھ جامد چیزوں کے اندر اور کچھ سیال ذروں کے اندر. میں یا دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہے، ہم کہاں تھے پہلے؟ ہم پہلے دنیا میں آنے سے پہلے تھے ماں کے پیٹ میں. وہاں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ اپنے ماں کی چھاتی میں اور اپنے باپ کی پشت میں. وہاں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ وہاں آنے سے پہلے تھے زمین کے اندر بکھرے ہوئے ذروں میں، پانی کے اندر بکھرے ہوئے قطروں میں. وہ چیزیں سمٹ سمٹا کے، اکٹھا ہو کے ایک جگہ جمع ہوئی، وہ غذا بنی ہمارے باپ کی، وہ غذا بنی ہماری ماں کی، پھر وہ غذا کا خلاصہ نکلا اس کے مادہ منویہ کی شکل میں، اور پھر اس کے انڈوں کے اندر سے اللہ پاک نے ہماری تخلیق کے فیصلے فرمائے. تو ہم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، بے جان ذرے تھے. جیسے زمین کو آج ہم بے جان سمجھتے ہیں، ویسے یہ ایک تل ہمارا ماضی ہے. یہ زمین کیا ہے؟ یہ ہمارا ماضی ہے، اور اگر دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا مستقبل بھی ہے، قبر میں ہم جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم اتنے بے جان تھے جیسے یہ زمین ہے، جیسے یہ پتھر ہے. فَأَحْيَاكُمْ، اس نے انہی جامد ذروں کے اندر، انہی سیال ذروں کے اندر جان ڈال کر تم کو ایک زندہ مخلوق بنا دیا. یہ زمین دیکھتی نہیں ہے لیکن یہ ہماری آنکھ دیکھتی ہے. یہ بنی کس سے ہے؟ اسی زمین سے. یہ زمین سنتی نہیں ہے، ہمارا کان سنتا ہے. یہ کان بنا کس سے ہے؟ اسی زمین سے. یہ زبان بولتی ہے اور یہ زمین نہیں بولتی ہے، حالانکہ یہ زبان بنی ہے اسی زمین سے. جتنی ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں، ساری صلاحیتیں کچھ اسی قسم کی ہیں. ثم یمیتکم، تو یہ سب سے بڑا احسان کہ زندگی اس نے دی، پھر اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے یمیتکم، وہ تم کو موت بھی دے گا. عجیب بات ہے، موت کو بھی احسان فرما رہے، اس لیے کہ یہ अगर इस दुनिया को तकलीफ का जहान समझे, तकलीफ की दुनिया समझे, तो वो तकलीफ की दुनिया के खत्म होने का आखिरी स्टेज है, मौत। और आखिरत की दुनिया को राहत का जहान समझे तो वहां का ये मुकदमा है, वहां का ये पहला स्टेज है। तो यहाँ का ये ततिम्मा है, वहां का वो मुकदमा है, इस बुनियाद पर इसको भी नियामत फरमाया गया। सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाउन, जब दोबारा जिंदगी दी जाएगी तो वहां तो अल्लाह पाक के अदल का मुजाहरा होगा, फजल का मुजाहरा होगा, करम का मुजाहरा होगा, अल्लाह की सिफात अपनी तमामियत के साथ में जाहिर होंगे, वहां पर अल्लाह की सिफात के मजाहिर अतम को देखने का मौका मिलेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाउन, फिर उसके सामने खड़े कर दिए जाएंगे सब के सब, दुनिया में जहां कहीं भी दफन हो, जहां कहीं भी बहा दिए गए हों, हवाओं के अंदर बिखेर दिए गए हों, कब्रों में दफना दिए गए हों, पानों में पानियों के अंदर डालकर डुबो दिए गए हों, इलैहि तुरजाउन, जाएंगे उसी के पास। हुवल्लज़ी खलक लकुम मा फिल अर्ज़ी जमीआ, एक एहसान ये भी है, और ये इसी एहसान के अंदर सारे एहसान छुपे हुए हैं। मा फिल अर्ज़ी जमीआ को अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते बना दिया, जितनी ज़मीन के अंदर नियमतें हैं। अब हर नेमत की अलग अलग तफसील करो और माफिल अर्जी जमिया बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। तो सारे इनामात को, सारी ज़मीनी नेमतों को, इंसान की नेमतें पूरी की पूरी ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। अगर आसमान से है भी तो ज़मीन के साथ में इंसान को फ़ायदा देती है, बारिशें हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये ज़मीन से, आसमान के पानी से भी इंसान बराह रास्त फ़ायदा कहाँ उठाता है, वो आके ज़मीन में ज़खीरा होता है, फिर उसको मुख्तलिफ शक्लों के जरिए से इंसान अपने इस्तेमाल में ले आता है। तो माफिल अर्ज जमीआ इंसान की नियामतों का एक गोदाम है, और इस गोदाम को अल्लाह ने हमारे वास्ते बना दिया है। यहां पर एक मसले को उलमा ने छेड़ा है, क्योंकि आजकल आवाम को भी मसाइल से, वो भी ऐसे गंभीर मसाइल से जो आवाम में आम नहीं होने चाहिए, उनके अंदर डाला जाता है, फिर उनके जहनों को ख़राब किया जाता है, तो जिक्र कर देना बस दफ़ा मुनासिब ही होता है। वो मसला है खलक लकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ, दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो चीज़ें असलन हलाल है या असलन हराम है? दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो चीज़ें असलन इंसान के वास्ते हलाल है या हराम है? बाद लोगों ने इस आयत को देखते हुए कहा, मुफस्सरीन ने, कि लकुम तुम्हारे फ़ायदे के वास्ते, मतलब यह हुआ कि दुनिया की सारी चीजें असलन हलाल हैं। हाँ, कोई नस आकर बताएगी कि यह चीज हलाल नहीं है तो फिर वो हराम होगी। यूं समझिए कि जितनी मुहर्रमात हैं वो इनके नजरिए के मुताबिक, इन मुफस्सिरीन के मुताबिक पहले हलाल ही थी, उन नुसूस ने उनको हराम किया है, उन दलाइल ने, उन आयत कुरानी ने, उन हदीस शरीफा ने उनको हराम किया। मुफस्सिरीन का दूसरा ग्रुप ये कहता है कि नहीं, अशिया के अंदर असल हुर्मत है, वो चीज़ें असलन हराम है, नस आकर बताती है कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल। उसूल फ़िक्ह का मसला है, असल में एक दरमियाना कौल पाया जाता है, वो ये कि गोश्त के अंदर मुहक्किकीन का एक दरमियाना कौल है, जो बिल्कुल सारी चीज़ों को असलन हलाल भी नहीं बोलता, दूसरी तरफ असलन हराम भी नहीं बोलता, बोलता है कि गोश्त के अंदर असलन हुर्मत है, वो नुसूस के अंदर पाई गई शराइत के साथ में हलाल है। सब तो ये कि जिस गोश्त है किस चीज का है पहले वो तय होना, हलाल जानवरों में से है नहीं जिनको नुसूस ने हलाल किया, फिर उसके बाद हलाल है तो फिर हलाल तरीके से उन्होंने हमारे पास आए या हराम तरीके से आए। ये तो गोश्त के अंदर असलन हुरमत है, हिल्लत नुसूस के बताए हुए शराइत से आती है, और बाकी चीजों के अंदर, गोश्त के अलावा बाकी चीजों के अंदर हिल्लत असल है, वो हलाल असलन है, नुसूस के बताने से फिर वो हराम होंगे। इब्न हय्यान दूसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस आयत के अंदर ना तो मुजव्विज़ीन की दलील है ना मानेहीन की दलील है। उन्होंने बोले लकुम के अंदर लाम सबबियत का है, मतलब यह है कि तुम नहीं होते तो मैं ये चीजें भी नहीं पैदा करता था, तुम्हारी वजह से मैं इनको पैदा करा, तुम्हारी वजह से मैं पैदा करा, तो अब सारी की सारी चीजें तुमको खाने के, इस्तेमाल करने देने के वास्ते ही पैदा किए, जरूरी थोड़ी है। अब उसके अंदर सांप भी आ गया मिसाल के तौर पर, तो सांप खिलाना मकसूद थोड़ा ही है, बिच्छू खिलाना थोड़ा ही मकसूद है, जहरीली चीज़ें खिलाना थोड़ा ही मकसूद है। तो मतलब यह हुआ कि जितनी मखलूकात तुम्हारे बनाई गई हैं वो इस वास्ते बनाई गई हैं कि किसी ना किसी तरह तुम्हारे काम आए, तुम्हारी वजह से बनाई गई। अगर वो नहीं, तुम नहीं होते तो फिर ये भी नहीं होते, तुम्हारी खिदमत के लिए इनको बनाया गया। तो इसके अंदर खिदमत एक अलग चीज़ है, हिल्लत और हुरमत अलग चीज़ है। एक चीज़ हराम होते हुए भी खादिम हो सकती है, एक चीज़ हराम होते हुए भी खिदमत कर सकती है। तो खिदमत होना अलग चीज़ है और हिल्लत और हुरमत अलग चीज़ है। इस मसल इस आयत के अंदर इब्न हयान अंदलुसी रहमतुल्लाहि अलैह की तशरीह और तफसीर के मुताबिक खिदमत का तो बयान है और वजह का तो बयान है, लेकिन हिल्लत और हुरमत से इस आयत को ताल्लुक नहीं, वो फरमाते हैं। लेकिन बहरहाल उलमा के दोनों ग्रुप दो तरफ हैं, मुहक्किन का कौल भी जिक्र कर दिया गया है, तो कभी ज़रूरत पड़े तो ये तफसील है उस बारे में। माफिल अर्जी जमीआ को अल्लाह ने फायद खिदमत के लिए ही बनाया है, तो इससे साबित यह होता है कि दुनिया की कोई शय बेकार नहीं है। ये एक बुनियादी मज़मून है, दुनिया की कोई भी चीज़ वो बेकार नहीं नहीं है, चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। जिन चीज़ों के बारे में हमारा यह तासुर होता है देखने के फ़ौरन साथ ही कि ये अजीब चीज़ है, एकदम बेकार है, ये हमारा अपना तासुर है, क्योंकि हम उसकी तासीर से, उसकी खासियतों से और उसकी हकीकत से और उसके इस्तेमाल के मकामात से वाकिफ नहीं है। अगर हमको मालूम हो कि इसका इसका फ़ायदा क्या है, इसको कैसे कैसे यूज़ कर किया जा सकता है, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो फिर एक मामूली चीज़ जो कल तक मामूली थी आज उसका तरीक़ इस्तेमाल मालूम होने के बाद में वो एक गैरमामूली चीज़ बन जाती। तो खुलासा ये होता है दुनिया की चीज़ों के अंदर कि है हर एक चीज़ काम की और फायदे की और किसी न किसी तरह इंसान की खिदमत के लिए, लेकिन उसके अंदर हमारे साथ में किस्सा ये होता है कि हमको मालूम नहीं होने से, इंसानों की जहालत की वजह से, लाइल्मी की वजह से इंसान उसको बेकार समझ बैठता है। माफिल अर्ज जमिया को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो खिदमत के वास्ते है, वो बेकार नहीं है। और दूसरे आयतों को भी साफ अंदाज में बताया गया है कि रब्बना मा खलकता हाजा बातिला सुबहानक, आपने इनको बेकार नहीं पैदा किया। तदब्बुर करने वाले आयत कुरानी के अंदर अल्लाह ताला के कुदरत के मज़ाहिर के अंदर, कुदरत के शाहकारों में गौर फिक्र करने वाले और उसको अपनी हिदायत का जरिया बनाने वाले लोग, वो इनमें गौर फिक्र करके किस नतीजे पे पहुंचते हैं, इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि रब्बना मा खलकता हाजा बातिला, आपने इनको बेमकसद नहीं पैदा किया। और खुद तआला ने भी फरमाया वमा खलकना समावाति वल अर्ज वमा बैनहुमा लाइबीन, खेल कूद करने के मकसद से नहीं पैदा करा मैं इन सब चीज़ों को, दुनिया को, जमीन आसमान को, जमीन को, उनके दरमियान की मखलूकात को, इल्ला बिलहक, इनको जो पैदा किया है वो एक बरहक मकसद से पैदा किया है, एक बरहक फायदों के वास्ते, मकसद भी फायदा भी सबका तय है। तुम मस्तवा इल समाई फसवाहुन्ना सबा समावात, फिर अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई। ये इस्तवा इल समा, इस्तवा का मतलब आता किसी चीज़ की सीधा सीधा हो जाना, कोई चीज़ में टेढ़ हो तो वो है ज़ुइबत, टेढ़ वाली, और कोई चीज़ टेढ़ उसके अंदर नहीं है तो बोलेंगे मुस्तवी, सीधी। इस्तवा, अल्लाह सीधा सीधा आसमान की तरफ गए, क्या मतलब? मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन की तख्लीक के बाद में रास्त आसमान की तख्लीक का कस्द फरमाया, इरादा फरमाया, उनके इस इरादे के बीच कोई चीज़, कोई मखलूक, कोई और किसी और का इरादा हायल नहीं हुआ, ये मतलब होता है। क्योंकि हर अल्फाज के वही माना मुतकल्लिम के हिसाब से और उसका जो फाइल है, उसका अंजाम देने वाला जो की वाली जो हस्ती है, उस हस्ती के लिहाज से उसका माना मुराद लिया जाता है। एक एक बहुत आम बात है, एक कॉमन बात है, ऐसी बहुत मुश्किल बात नहीं है। किसी भी बात का मतलब वो लिया जाएगा जो उस बोलने वाले के शायन शान होगा। बोलेगा बड़ा आदमी और उसका मतलब लेगा छोटा आदमी अपने जहन से, ऐसा नहीं चलेगा और ऐसा चलता भी नहीं है दुनिया के अंदर, ये कॉमन राइज नहीं है ये चीज। जो बोलने वाला होता है बोलने वाले के लिहाज से ही उसका मफहूम मुराद लिया जाता है। इसलिए इस्तिवा इलसमा का मतलब होगा कि जमीन की पैदाइश के बाद में अल्लाह ताला ने बराह रास्त आसमान की तख्लीक का कसद इस तरह फरमाया कि उनके इस इरादे में कोई चीज हायल नहीं हुई। फसव्वाहुन्न सबअ समावात, फिर एक नहीं सात आसमान वो भी ठीक ठीक बना डाले, वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। आसमानों के वजूद और उनकी तादाद के बारे में मुखालिफ इस्लाम नज़रियात आज भी दुनिया में मौजूद हैं। फलासफा का नज़रिया जो था वो ये कि आसमान है तो सही लेकिन सात नहीं है, नौ है। आज की दुनिया वालों में से बाजों का नजरिया यह है कि आसमान है ही नहीं, फिर ये जो नजर आ रहा है ये हद नजर है, यानी हमारी नजर जाके वहां टिक जा रही है, हम उसी को आसमान समझ रहे, हालांकि ये आसमान नहीं है। क्यों? अगर आसमान होता तो वो खुलता नहीं, वो जमता नहीं। हम तो देखते हैं ना कि आसमान पे कैफियतें कुछ अजीब सी हैं, कभी जो है वहां अबर जमा हुआ है इस तरह, उसकी रंगतें अलग अलग हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये आसमानों की सिफत नहीं हो सकती, जो हमें नजर आ रहा है वो आसमानों की सिफत नहीं हो सकती है। बाजों ने तो कहा कि ऊपर तो बस आईना है, समंदरों के नीलगुं पानी के नीलेपन का असर है जो ऊपर नजर आता है। समंदर का पानी नीला है तो उसके नीलेपन का असर उस आईने में नजर आ के आसमान भी नीला नजर आता है। ये नीलगुं गुंबद क्या है? अक्स है। आसमानों के वजूद के जो मुनकिर हैं उनकी भी तर्दीद है कि आसमान मौजूद नहीं है। नहीं, आसमान मौजूद हैं, अल्लाह ने बनाए हैं, बनाने वाला खुद बोल रहा है मैंने बनाए हैं। तो फिर हमको तहकीक नहीं है? हाँ, नहीं है, बहुत सी चीजों की नहीं है। जैसे तुम कहते हो कि खला के अंदर अभी हम 3% तहकीकात कर पाए हैं, 97% तहकीकात अभी हमारी बाकी है। कहते हैं जितनी चीजें हमें दरियाफ्त हुई हैं, मिली हैं, वो कितनी हैं? हमें ऐसा लगता है कि ये 3% है, जो नहीं दरियाफ्त हुई वो 97% है। तुमको जब जो नहीं दरियाफ्त हुआ उसका इल्म नहीं है, तो ये जो अंदाजा लगा रहे कि ये 3% है वो 97% है, ये क्या हिसाब से लगा रहे? 100 के 100% सामने हो तो बोल सकते हैं कि ये 3% है, ये 97% है, ये 3% है और ये 97% है। 100 तो तुम्हारे सामने है नहीं, जो गायब है उस पे भी इन लोगों को अपनी तरफ से कुछ बोलने का एक जो जहन है वो मुलाहजा फरमाए। जो चीज नहीं है उस पे भी रायजनी करने की आदत है। तो अगर इन लोगों ने किसी मौजूद चीज के ऊपर ऐसी रायजनी कर दी है जो खिलाफ हकीकत है और वही आसमानी के खिलाफ है, तो तामुल की क्या, यानी इसमें बईद क्या बात है? ये लोग जो जिन चीजों को नहीं देखा है उस पर के बारे में भी बोलते रहते हैं, इनकी तो आदत है। 3% 97% का जो खेल है या इनका जो इनकी जो बात है, सीधी सीधी बात है कि क्या हिसाब से तुमने ये 3 और 57 का तनासुब कायम किया है कि जो मालूम हुआ वो 3% है, जो नहीं मालूम हुआ वो 97% है। मैंने जो पढ़ा था या सुना था वो 3% 97% का था। हो सकता है इनकी तहकीकात कुछ और आगे बढ़ी हो, इनकी मालूमात कुछ और ज्यादा हुई हो, तो ये फीसद इधर से कुछ और आगे बढ़ा हो मालूमात का और जहालत का कुछ और घटा हो। लेकिन जो तनासुब ये कायम कर रहे हैं क्या वो यकीन पे मबनी है? क्या उसमें सदाकत है पूरे तौर पे? अगर नहीं है तो क्या उनके इस जैसी रायजनी करने वालों के अकवाल की बुनियाद पे हम वही आसमानी की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? जाहिर सी बात है उन लोगों को हम यही बोलेंगे ना कि अंधेरे में तीर चलाने वाले, लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। अंधेरे में तीर चलाने वालों के मुकाबले में एक वो है, एक रोशनी वो है जो आसमान से आई है। अब अगर वो अंधेरे में तीर चलाने वाला, अटकल बातें करने वाला ऐसी बात करता है जिससे वही आसमानी की खिलाफ वर्जी होती है, तो हम बेझिझक बिला तामुल उसको रद्द कर देंगे। तो इस आयत ने आसमानों के वजूद को भी साबित किया कि ये कोई मादूम शय नहीं है, ये है और एक नहीं है, सात है, ऐसा भी नहीं है 9 जैसा फलसफा कहते हैं, बल्कि ये 7 है। सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी भी चीज के बारे में उसका बनाने वाला जो बात उसके बारे में बता सकता है, उसको बरतने वाला उसके बारे में वो बात नहीं जान सकता। कंपनियां जिस चीज को, किसी चीज को बनाती हैं, हम उस चीज को खरीद कर लाकर घर में यूज करते हैं, कंपनी उस चीज के बारे में जितना जानती है आप नहीं जानते। आप सिर्फ उसको एक महदूद दायरे में जानते हैं, बस वो बनाने वाली कंपनी के सामने वो चीज उस वक्त से है जब तक वो इस शक्ल में नहीं आई थी, उस वक्त से वो उसके सामने है जब वो इस शक्ल में नहीं आई थी तब से वो चीज उसके सामने, वो किन किन मराहिल से गुजर कर इस नतीजे तक वो पहुंचा, ये रिजल्ट तक आया है, वो वही जानता है, आप नहीं जानते हो। उसकी क्या खासियत और हो सकती हैं या होंगी, या क्या क्या उसके नुकसान हैं जो उसने छुपा दिए हैं, क्या फायदे उसने आपको दिखाए हैं जिसके बाद में भी नुकसान जाहिर हो सकते हैं, ये उसको ही पता है, आपको नहीं पता है अभी। इसलिए साइड इफेक्ट्स होते हैं फिर चीजों के। तो सबसे ज्यादा काबिल एतमाद बात किसी चीज के बारे में उस हस्ती की होती है जो उसकी बनाने वाली है, मेरी आपकी और सारी दुनिया की तख्लीक करने वाले अल्लाह पाक हैं। तो उनके बारे में, उस इन चीजों के बारे में जो बात वो बता देंगे उससे ज्यादा सच बात कोई हो ही नहीं सकती। वमन अस्दक मिनल्लाह हदीसा, वमन अस्दक मिनल्लाह कीला, उनसे बड़ा सच्चा कौन है? हुआ बिकुल्ली शय इन आलिम, इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं वो हर चीज़ का पूरा जानने वाला है। इल्म मेरे को है तुम्हारे को नहीं। वमा उती तुम मदल इल्म इल्ला कलीला, तुमको दिया भी थोड़ा ही। फिर तुम लोग वो जो दिया उसमें भी तुम लोग मैं हम को इतना मिला उतना नहीं मिला कर लेते बैठे। सुभान अल्लाह हमने सुभान अल्लाह।